તારીખ 14/11/1995 શ્રી મદ્રાજ ચંદ્રપત્રાંક 496-498 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 278
ગ્રસ્ત વ્યવહારમાં વર્તતા હોય તેને તો અખંડ નીતિનું મૂળ પ્રથમ આત્મામાં સ્થાપવું જોઈએ, નહીં તો ઉપદેશ આદિનું નિષ્ફળપણું થાય છે. શું કહે છે? જો મુમુક્ષુ જીવ ગ્રહસ્થ વ્યવહાર મેં હોતે હૈ, ગ્રહસ્થ કે વ્યવહાર મેં હોતે હૈ, ઉન્હેં ગ્રહસ્થી ચલાને કે લીએ આર્થિક વ્યવસાય કુછ ને કુછ કરના પડતા હૈ. उसे तो अखंड नीति का मूल प्रथम आत्मा में स्थापित करना चाहिए. इसको निर्दोष होना है. उपदेश को निर्दोषता के उपदेश को ग्रहण करना है. जिसको उनको अपने व्यवहार में भी न्याय नीति होना आवश्यक है. आर्थिक विषय में किसी से अन्याय करे या अनीति करे पर उस प्रकार का व्यवहार रखे तो उसको उपदेश कैसे लगेगा? तो उसको उपदेश नहीं लगेगा. नहीं तो उपदेश आदि का निष्फलपना होता है. द्रव्यादि उत्पन्न करने आदि में सांगोपांग न्याय संपन्न रहे हूं, इसका नाम नीति है. क्या है? उसको क्या है? अभिप्राय मूल. मैंने अभिप्राय अभिप्राय में ये होना चाहिए कि मुझे किसी से अनीति नहीं करनी है. नीति का मूल मैंने क्या कि नीति पूर्वक मुझे सबों से व्यवहार करना है, ऐसा मूल में माने अभिप्राय में होना चाहिए. ये जरूरी है. अप्रमाणिकता अनीति मैंने अप्रमाणिकता. अप्रमाणिकता में सब प्रकार आ जाता है. पैसों के लेन देन में और माल के लेन देन में वो सब बात आ जाता है. क्योंकि व्यवसाय का अनेक प्रकार होता है. तो कोई भी प्रकार हो, हमको प्रमाणिकता से अपना व्यवहार करना है. ऐसा मूल में अभिप्राय होना चाहिए. फिर कोई अन्याय युक्त या अप्रामाणिक व्यवहार होगा तो उसका निषेध आएगा, उसका खेद होगा. लेकिन जिसमें मूल में वो बात नहीं होगी उसको क्या होगा कि भाई वो तो व्यवहार है, व्यापार है, उसमें तो सब कुछ करना पड़ता है, इसके बिना ये व्यवहार व्यापार नहीं चलता है. तो उसमें मूल में भूल है. मूल में वो अनिति करना चाहता है और करता भी है. तो उसको तो निर्दोष होने का जो उपदेश है वो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा. ये बात कह रहे हैं. स्थापित करना चाहिए मेरे वो मानना चाहिए. इस अभिप्राय को बांधना चाहिए कि मुझे मेरा काम प्रमाणिकता से करना है, न्याय नीति से करना है। जो भी हमको पैसा की कमाई करनी है, द्रव्यादि उत्पन्न करना, मैंने पैसा कमाना है उसमें, क्योंकि कोई माल में मिलावट करते हैं, कोई माल होता है कम क्या और बताता है क्या ऐसे, और कोई नाप में आगे पीछे कर लेते हैं, कई प्रकार की अप्रमाणिकता और नीति होती है। कोई पैसों के बाबत में ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कई प्रकार होते हैं। उसमें क्या है कि वर्तमान परिस्थिति अवश्य खराब है, फिर भी कई लोग नहीं भी करते हैं। इसके परसेंटेज इस काल में बहुत कम होते हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी करते हैं, ऐसा भी बनता है। तो वो कोई भूखे मर जाते हैं, ऐसे तो नहीं है। तो परसों ही बात हुआ था, हमने ऊपर रहते हैं रमणी भाई, कौन रहते हैं गांधी, हमारे बराबर अप्रमाणिकता नहीं करो तो काम चलता है, होता है। और खास करके जिस व्यापारी का इज्जत ही ऐसा है कि ये खोटा काम नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, तो लोग विश्वास से इनके साथ ज्यादा काम करता है। अगर इस प्रकार का पुण्योदय हो तो, पुण्योदय नहीं हो तो चाहे अनीति करे चाहे नीति करे, जैसा पूर्व प्रारब्ध होगा वैसा ही चलेगा। लेकिन हमको विश्वास नहीं है हमारे प्रारब्ध पर, तो लगेगा ऐसा कैसे किए बिना कैसा चलेगा, ये बात हो जाएगी। द्रव्यादि उत्पन्न करने आदि में मैंने पैसा कमाने के विषय में सांगोपांग न्याय संपन्न रहना, इसका नाम नीति है। नीति मैंने पॉलिसी कि हमें कहीं भी गड़बड़ नहीं करनी है, सांगोपांग मैंने हमको कहीं भी गड़बड़ नहीं करनी है, उसका नाम नीति है। नीति मैंने पॉलिसी है, यह नीति मुक्ता प्राण चले जाए ऐसी दशा आने से आने पर, अब ये भी होगा कि बहुत तकलीफ पाए कोई, तो अभिप्राय में तो ये बात हो जाए कि भाई ऐसा करते हुए चाहे हमारा प्राण भी चले जाए, उस वक्त पर त्याग और वैराग्य सच्चे स्वरूप में प्रकट होता है। तो ये तो जो अजमायश करे उनको ये बात समझ में आती है, जिसको उस प्रकार का अजमायश नहीं है उनको बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो उस तरह से दृढ़ है अपने अभिप्राय में और फिर भी ऐसा कोई प्रसंग बनता है कि तकलीफ होती है, तब ऐसे जीव को ऐसी योग्यता होती है कि उनको त्याग और वैराग्य उसी वक्त पर सच्चे स्वरूप में प्रकट हो जाता है, ऐसा बनता है। ये बहुत अपने अनुभव की बात करते हैं हम। कृपालु देव को ऐसा बना था, एक तो बहुत बड़ा प्रसंग बना था ऐसा सुनना है, इसमें तो कोई बात नहीं है। ऐसे कोई हीरा का कोई बार्गेन हुआ था और भूल से एक की जगह दूसरे दूसरा माल बेचने वाले ने दे दिया, तो बताया था माल वो कम कीमत का था और दिया वो बहुत भारी कीमती माल था, तो पैसों का लेन देन हो गया, माल भी ले लिया और फिर कुछ घंटों के बाद उनको पता चला कि तो अपनी गलती हो गई है, अब क्या करें। उनको तो ये लगा कि अगला मानेगा नहीं, क्योंकि हीरा तो सब हीरा ही दिखता है। उन्होंने आकर के बात बताया कि ऐसा हुआ है, देखो आपको जो माल बताया था वो यह है और आपके पास आया है वो दूसरा है और हमको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इसमें, हम तो मर जाएंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, देख लिया बात कहने वाला सही कहता है, ठीक है वापिस ले लो माल, वापिस ले जाना तो वापिस ले जाओ, फिर बदली करना हो तो फिर बदली कर लो, जैसा तुमको जचे वैसा कर लो, हमारी ओर से कोई बंधन नहीं है, कर दिया। तो बहुत प्रमाणिकता से खुद करते थे, काम करते थे बहुत प्रमाणिकता से करते थे और इज्जत भी बहुत थी उनकी, व्यवसाय के बाजार में काफी इज्जत थी और प्रमाणिकता से काम करने वाले की एक फिर इज्जत बन जाती है तो लोग बहुत उनके साथ व्यवहार ऐसे करते हैं कि बहुभाग तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। और वही जीव को सत्पुरुष के वचन का तथा आज्ञा धर्म का अद्भुत सामर्थ्य महात्मा और रहस्य समझ में आता है। वही जीव को सत्पुरुष का वचन समझ में आता है, सत्पुरुष के आज्ञा में रहने से कितनी ताकत आती है और सत्पुरुष के आज्ञा में क्या सामर्थ्य है वो समझ में आता है, उनका मूल्यांकन होता है सही और उससे जो पारमार्थिक लाभ होता है ऐसा रहस्य समझ में आता है। और सभी वृत्तियां निज रूप से प्रवर्तन करने का मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है, सिद्ध होता है मैंने प्राप्त होता है कि सभी वृत्तियां हैं वो फिर आत्मारूप होने का मार्ग उसको प्राप्त होता है या सुगम हो जाता है। यहाँ पर हम एक प्रश्न कर सकते हैं, वे ये 100 साल पहले की बात है, अभी 100 साल के बाद तो जमाना में 1000 साल में फर्क पड़े ऐसा फर्क हो गया है 10 गुना, और परिस्थिति देखते हुए ये प्रमाणिकता रखना तो संभव नहीं दिखता है, क्या करें, क्या हमको ज्ञानी पुरुष का उपदेश की प्राप्ति नहीं होगी। ये प्रश्न यहां पर उठ सकता है। तो इस विषय में इस प्रकार का विचार होना चाहिए, विचार आना चाहिए कि मुझे इस भाव में क्या करना है। अगर मुझे इस भाव में किसी कीमत पे मेरा आत्म कल्याण कर लेना ही है, ऐसा मेरा दृढ़ निर्धार है, निश्चय है, तो मुझे आत्मकल्याण होवे ऐसी ही सब व्यवस्था बिठानी चाहिए। तो देखेगा कि मेरा आजीविका आदि उपजीवन व्यवहार चले जैसी मेरी परिस्थिति है या नहीं है, या तो होगी या तो नहीं होगी, दो में से एक ही बात तो होगी ना। अगर जिसके पास कुछ संपत्ति है वो सबसे पहले ये विचार करेगा कि ये व्यवसाय को गोली मारो, छोड़ो इसको, मैं इसमें फंसा रहूंगा जीवन पर्यंत, मेरा आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। अगर नहीं है तो करना पड़ता है, तो उसका अभिप्राय तो बदलेगा कि प्रामाणिकता से करें, कम मिले ज्यादा मिले जो भी प्रारब्ध में होगा वैसा मिलेगा। या साथ में काम करने वाले होते हैं, कभी एक मत के होते नहीं, भाई हो तो भी एक मत के नहीं होते, लड़के हो तो एक मत के नहीं होते, भागीदारी होती है तो पार्टनर्स भी एक मत के नहीं होते, तो खुद निवृत्ति ले सकते हैं कि हमको निवृत्त करो, और निवृत्त करके हमारे हमारे हम इस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था करें जैसे हमारी निवृत्ति भी हो गए और आप लोगों को भी लाभ हो जाए, वो तो लोभी होते ही है। ये बात जरूर है कि अपना कुछ अधिकार है, अपना कुछ हिस्सा है, उसमें नुकसान जाता है, लेकिन आत्मकल्याण के लिए अवकाश हो जाता है। तो जिसको आत्मकल्याण करना है वो उसी दृष्टिकोण से जितनी भी व्यवस्था हो सकती है उतनी व्यवस्था वो बिठाने का प्रयास करेगा, और अगर इसकी भावना सही है तो कुछ न कुछ व्यवस्था बैठ भी जाएगी। निवृत्ति लेने वाले अपना आत्मकल्याण करता है तो इससे बढ़िया कौन सी बात है, इससे बढ़कर के तो कोई बात नहीं है। एक भी जीव का आत्मकल्याण होता है उसका संसार छूट जाता है, निर्वाण पद को वो पाता है, तो इसका मूल्य कितना बताओ, कितना इसका मूल्य है, कि उसका कोई मूल्य हो सके नहीं। और ऐसे निर्वाण पद के अधिकारी जीवों हो उसका आपस में संग रहे तो कौन सी आपत्ति है, ये बताओ। संसार में तो ऐसे सज्जनों की संगति तो मिलती नहीं, ऐसा यथार्थ सत्संग कहां मिलता है, तो बहुत दुर्लभ चीज है। तो ऐसे यथार्थ सत्संग का योग बढ़ता है तो ठीक बात है। देश काल संग आदि का विपरीत योग बहुभाग आपको वर्तता है, जिसको चिट्ठी लिखा है उसको कोई अनुकूलता है और प्रामाणिकता का उपदेश दिया है, ऐसी बात नहीं है, मालूम है कृपालु देव को, मालूम है कि देश काल और संग आदि की का विपरीत योग बहुभाग आपको वर्तता है, इसलिए बार बार प्रतिपल तथा हर कार्य में सावधानी से नीति आदि धर्मों में बरतना चाहिए। और जब प्रतिकूलता वर्तती ही है तो आपको तो बहुत सावधानी होनी चाहिए, प्रतिपल प्रत्येक कार्य में सावधानी से नीति आदि में वर्तना चाहिए, नीति धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। आपके तरह जिस जीव को कल्याण की जो जीव कल्याण की आकांक्षा रखता है, क्या आपकी तरह जो जीव कल्याण की अपेक्षा रखता है और प्रत्यक्ष सत्पुरुष का निश्चय है, उसे प्रथम भूमिका में शुरुआत में यह नीति मुख्य आधार है। क्या है कि जिसको आत्मकल्याण करने की अपेक्षा है, अंदर में योग्यता है ऐसे, और बाहर में सत्पुरुष का योग भी है, ऐसे जीव को तो निर्दोष होना है, इसलिए प्रथम ही प्रथम भूमिका में ही ऐसी नीति बनाना, ऐसी पॉलिसी बनाना, ऐसा अभिप्राय रखना, ये आधारभूत बात है। इससे बहुत फायदा होगा उसके परिणाम में, मूल में ये बात रहेगी तो काफी फायदा होगा। जो जीव जिस जीव को सत्पुरुष का निश्चय हुआ है, ऐसा मानता है कि मुझे सत्पुरुष का निश्चय हुआ है, मैंने पहचान हुई है, उसको तो ऊपर कहीं उसको तो ऊपर कहीं यह नीति का जो बलवानपना न हो और कल्याण की वांछा करे, याचना करे या बात करे, तो यह निश्चय मात्र सत्पुरुष को वंचने के बराबर है। वंचना मैंने ठगने के बराबर है। देखो, तार तरवारनी सोहली दोहली चौदमा जिनतनी चरण सेवा, आनंद जी ने गाया कि नहीं, कठिन लगे ऐसी बात है, फिर भी जिसका निर्धार है कि हमको आत्मकल्याण कर लेना ही है, वो तो जैसे कैसे करेगा ही करेगा। कोई भी मुसीबत आ सकती है, आने दो, उस वक्त हमारी योग्यता और पुरुषार्थ और बढ़ाने का मौका हमको मिलेगा। वो कभी घबराता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता, घबराहट नहीं होती उसको।
इसका भी विकल्प नहीं चलेगा,
नहीं वो तो हिम्मत आ गई तो विकल्प नहीं चलेगा, देखा जाएगा
जिस समय आएगा या ऐसा आएगा तो मुझे क्या करना, ऐसा भी विकल्प पहले से उसको
नहीं आएगा, क्योंकि उसको क्या करना क्या, उसको तो पुरुषार्थ ही बढ़ाना है और उनको ये भी विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति में मेरा पुरुषार्थ और बढ़ेगा, मेरे परिणाम गिरेंगे तो नहीं लेकिन मेरा पुरुषार्थ और बढ़ेगा, ऐसा उनको शुरू से ही विश्वास होता है। और ये मार्ग है, ये तो वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं है। ऐसे भगवान महावीर का मार्ग है इसलिए वीर का मार्ग है, और जो वीर पुरुष है उसका मार्ग है। गुरुदेव तो हमारे कहते थे ये मार्ग तो क्षत्रिय लोगों का है, हमारे तीर्थंकर तो राजा महाराजा क्षत्रिय थे। अब ये धर्म है ये मनियों के हाथ में आ पड़ा है, मनियों मैंने कमजोर लोगों के हाथ में आ गया है। तो ये धर्म की हानि हो गई है। उल्लासित वीर्यवान ही तत्व पाने का मुख्य अधिकारी ही है, तो उसका उत्साह बढ़ेगा, उसके परिणाम गिरेंगे नहीं। क्या कहा, जिस जीव को सत्पुरुष का निश्चय हुआ है ऐसा वो मानता है कि मुझे पहचान हुई है, उसमें ऊपर कहीं वैसी नीति का यदि बलवानपना नहीं हो और फिर कल्याण की वांछा करे या याचना करे, सत्पुरुष के पास वो याचना करे, अरे आप मेरा कल्याण कर दो, आप मेरी पर कृपा करो, मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी याचना करे या ऐसी कोई बात करें, तो ये निश्चय मात्र सत्पुरुष को ठगने के बराबर है, उसको पहचान नहीं हुई है, वो ठगता है। यद्यपि सत्पुरुष तो निराकांक्षी है, सत्पुरुष को तो कोई अपेक्षा होती नहीं है, इसलिए खुद को ठगाए, उस खुद को तो ठगाने की कोई बात है ही नहीं, वो तो खुद को अपेक्षा नहीं है तो उसको ठगाने की क्या बात है, उसको उसका तो कोई जाने वाला है ही नहीं। परंतु इस प्रकार से वर्तने वाला जीव वह अपराध योग्य होता है, इस प्रकार से वर्तन करने वाला जीव अपराध के योग्य होता है, सत्पुरुष का तो कोई जाने वाला ही नहीं, उसको तो क्या लेना है, उसको तो कुछ लेना तो है नहीं, तो उसको क्या नुकसान होगा, नुकसान तो अपराध करने वाले को होता है। यह बात पर बार बार आपको तथा आपका समागम चाहते हैं ऐसे मुमुक्षुओं को लक्ष्य कर्तव्य है, किसके पर चिट्ठी लिखा है वो नहीं बताया है, लेकिन वो जानते हैं कि इसके समागम में दूसरे भी मुमुक्षु आते हैं, तो आपको और आपके समागम में जो मुमुक्षु आते हैं उनको ऐसा लक्ष्य कर्तव्य है। कठिन बात है इसलिए नहीं हो सके, यह बात कठिन है इसलिए हो सके ऐसी नहीं है, यह कल्पना, ये कल्पना मात्र है, वास्तविकता नहीं है, ऐसी कल्पना मुमुक्षु को हितकारी है, ऐसी कल्पना तो हितकारी नहीं है, अहितकारी है और त्याग कर देने योग्य है, उसको ये कल्पना छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से ये पत्र में व्यवहारिक प्रमाणिकता के विषय में कृपालु देव ने अपने अभिप्राय को व्यक्त किया है, और वो व्यवहारिक प्रमाणिकता के साथ परमार्थिक हित अहित का कैसा संबंध होता है वो भी बात कही है। चार सौ सत्तानु लेना है। उपदेश की आकांक्षा रहा करती है, वैसी आकांक्षा
मुमुक्षु जीव को हितकारी है। जिसको पत्र लिखा है उसको उपदेश की अपेक्षा रहती है कि आपकी ओर से हमें कोई उपदेश मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो ऐसी अपेक्षा मुमुक्षु जीव को होनी चाहिए और यह हितकारी भी है। जागृति का विशेष हेतु है और ऐसे आकांक्षा आत्म जागृति का कारण बनती है। जैसे जैसे जीव में त्याग वैराग्य और आश्रय भक्ति का बल बढ़ता है, वैसे वैसे सत्पुरुष का वचन का अपूर्व और अद्भुत स्वरूप भाषित होता है। क्या कहते हैं? और त्याग वैराग्य और आश्रय भक्ति का बल बढ़ता है। बलवान वैराग्य होता है, उसको उदासीनता पूर्वक आश्रय में रहना, उसी को कहते हैं आश्रय भक्ति। बहुमान से, विनय से, भक्ति से, सत्पुरुष के आश्रय में रहना, उसको कहते हैं आश्रय भक्ति। ऐसे परिणाम जिसके बलवान होते हैं या उसका बल जिसको वृद्धिगत होता है, जैसे जैसे वृद्धिगत होता है वैसे वैसे सत्पुरुष का वचन का अपूर्व और अद्भुत स्वरूप भाषित होता है। सत्पुरुष के वचन में जो रहस्य है, उससे पारमार्थिक लाभ होता है, उसका अद्भुत स्वरूप और उसका अपूर्व लाभ होने होता है, ऐसा स्वरूप भाषित होता है, यानी लगने लगता है उसको। भाषित होता है मैंने लगने लगता है। क्या बात कही इसमें? कि ऐसे जीव को अपने आत्मा पर जो असर पहुंचती है उसको कहता है भाषित होना। अपने आत्मा पर जो असर पहुंचती है और उससे उनका जो पारमार्थिक लाभ दिखता है, तो लगता है कि मेरा कोई अपूर्व लाभ होने वाला है, कि ज्ञानी पुरुष के वचन से मेरा कोई अपूर्व लाभ हो रहा है और बहुत अपूर्व लाभ आगे जा करके होने वाला है, परिपूर्ण लाभ होने वाला है। तो इसका वचन का ये अद्भुतता मालूम पड़ती है, वचन की अद्भुतता लिया है, क्योंकि उसमें चमत्कार रहा, अपने आत्मकल्याण का दिखा। मेरा आत्मकल्याण हो जाएगा, मैं कहां था कहां चला आगे जाऊंगा, ये बात सब समझ में आती है। तो ये चमत्कारिक विषय लगता है। क्या वैराग्य क्या होता है? कि वैराग्य के साथ कभी कभी कोई बात का त्याग करने का प्रसंग आ जाता है, जिसको वैराग्य होता है। तो उदय में कोई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसमें अपना अधिकार वाली बात भी छोड़नी पड़ती है, उसको कहते हैं त्याग। ऐसे तो अधिकार अपना होता है, फिर भी वैराग्य के कारण कोई ऐसा प्रसंग आता है कि अपने को त्याग करना पड़ता है। अगले को चाहिए और हमारा अधिकार होने पर भी हमको छोड़ देना पड़े, तो छोड़ते हैं। ऐसे जो मुमुक्षु होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, उनको ऐसे प्रसंग भी आते हैं। व्यवसाय में, व्यवहार में, गृहस्थी में भाई भाई हो, भागीदार हो, कहीं भी ऐसे ऐसे प्रसंग बनते हैं कि व्यवहारिक तौर से अपना अधिकार हो लेकिन अपने को परिणाम बिगड़े ऐसी परिस्थितियां आए तो वो नहीं करना है। दृढ़ता होती है तो त्याग कर देते हैं, छोड़ो अपने को, नुकसान गया तो भले गया, उसको कहते हैं त्याग। और वैराग्य का बल, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय किया कि मुझे आश्रय भक्ति में, भक्ति से आश्रय में रहना है, तो ऐसे जीव को फिर अपने आत्मा में सत्पुरुष के वचन का अपूर्व लाभ होता है और वो अपूर्व लाभ का अद्भुत चमत्कार उसको मालूम पड़ता है, भाषित होता है, मैंने मालूम पड़ता है, ऐसा बनता है।
सभी दे सकते हैं जीव में त्याग, मतलब मिथ्याग्रह, स्वच्छंद, प्रमाद, इंद्रिय विषय की अपेक्षा, इसका त्याग जब जीव करता है तो वैराग्य,
प्रकृति का त्याग भी आता है उसमें,
तो प्रकृति आई, स्वच्छंद का त्याग, मतलब प्रकृति आई फिर वैराग्य बढ़ता है, आश्रय भक्ति में जो
उसमें क्या है, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा है उनको इसकी योग्यता में ये बात कहनी जरूरी लगी है कि आपको क्या करना पड़े, तो वैराग्य पूर्वक होना चाहिए, आश्रय भक्ति में रहोगे तो हमारे वचन का अपूर्व लाभ हो सकेगा और इस वचन की अद्भुतता भी मालूम पड़ेगी, ऐसा चमत्कार बनेगा जीवन में, तो अगले को वैसे इसकी योग्यता है उसी अनुसार ये बात कही है कि वर्तमान में इस बात करने में उसको लाभ है, तो ये बात कही है।
इसलिए मैं भी क्रम का विषय आ गया जो वचन है उसमें भी क्रम का विषय आ गया
वो तो जैसे जैसे ऐसा लिखा ही है ना, जैसे 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 होता है वैसे वैसे उसको ये मालूम पड़ता है।
ऐसे नहीं लिया कि आश्रय भक्ति में आवे तो वैराग्य होवे तो त्याग होवे, ऐसे करके नहीं लेकर ऐसे लिया कि त्याग होवे तो वैराग्य आएगा, फिर आश्रय भक्ति फिर आश्रय भक्ति का बल बढ़ेगा।
यदि आश्रय भक्ति में आता है तो त्याग वैराग्य तो बढ़ेगा ही, वो तो हो सकता है, लेकिन साथ साथ होना चाहिए, आश्रय भक्ति होनी चाहिए साथ साथ त्याग वैराग्य का बल भी होना चाहिए, त्याग वैराग्य का बल हो तो साथ साथ आश्रय भक्ति भी जरूरी है। ऐसे इस व्यक्ति के लिए खास जिसको चिट्ठी लिखा है, पत्र लिखा है, इसकी योग्यता में वो बात जरूरी दिखती है, तो लिखा है। और बंधन निवृत्ति के उपाय सहज में सिद्ध होता है, बंध का नाश होने का जो उपाय है, अबंध दशा प्राप्त होने का उपाय है, वो सहज मात्र में प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष सत्पुरुष के चरणारविंद का योग कितने समय तक रहे तो फिर वियोग में भी त्याग वैराग और आश्रय भक्ति की धारा बलवान रहती है। क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष के चरणारविंद का योग कुछ समय तक रहता है तो फिर वियोग में भी त्याग वैराग और आश्रय भक्ति की धारा बलवान रहती है। तो कुछ समय तक आत्महित की बुद्धि से और आश्रय भक्ति से के दृढ़ परिणाम से ये प्रत्यक्ष योग रहा, फिर प्रारब्ध वशात ऐसा योग नहीं रहा, वियोग रहा, वियोग हुआ, तो वैसे योग में आश्रय भक्ति की धारा, परिणाम की धारा बलवान होती रहती है। और आश्रय भक्ति की धारा बलवान रहती है तो नुकसान नहीं होता है, नहीं तो माथा मैंने बुरा देश काल संयोग आदि ना योग से सामान्य वृत्ति के जीव को त्याग वैराग्य आदि के बल में बढ़ सकते नहीं है, अथवा मंद पड़ जाता है या सर्वथा उसका इस परिणाम का नाश हो जाता है। तो जिसको बलवान परिणाम है उसको तो सत्पुरुष का वियोग में भी परिणाम ठीक रहेगा, और जो सामान्य है उसके ऐसे बलवान परिणाम रहेंगे नहीं, उनके तो बल बढ़ेगा नहीं, या तो उसका परिणाम में मंदता आ जाएगी या तो परिणाम ही छूट जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए जब ये प्रत्यक्ष योग हो तब त्याग वैराग और आश्रय भक्ति के बलवान परिणाम मुमुक्षु को होना चाहिए, तो वियोग में भी ये परिणाम और बढ़ेगा, वरना ये परिणाम चले जाएंगे या मंद हो जाएंगे। ये हुआ 497। अब 498 लेना है, 498वां पत्र त्रिभुवन भाई जो खंभात के मुमुक्षु थे उसके पर लिखा हुआ है। योग वाशिष्ठ मांचन करने में हरकत नहीं है, यानी पढ़ना आप, योग वाशिष्ठ रामायण है उसकी पढ़ाई करना, मांचन करना, उसमें कोई हरकत नहीं है। उस जमाने में कृपालु देव के समीप में जो आए थे मुमुक्षु, वो लोग कोई ग्रंथ पढ़ते तो कृपालु देव की आज्ञा लेकर के पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि अपने आप पढ़ ले, मेरी योग्यता में पढ़ने लायक है कि नहीं और आपकी आज्ञा है कि नहीं, ऐसा बनता था। तो प्रत्युत्तर में लिखते थे तो पढ़ो आप, हरकत नहीं है, कभी मनाई भी कर दे कि आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए, अभी जैसा भी ठीक समझे ऐसे कहते थे या लिखते थे। आत्मा को बार बार संसार का स्वरूप कारागृह जैसा प्रतिक्षण लगे, यह मुमुक्षुता का मुख्य लक्षण है। देखो कृपालु देव की मुमुक्षुता की ये परिभाषा है। क्या लिखा है कि संसार का स्वरूप बार बार आत्मा को कारागृह जैसा लगे, मैं बंधन में पड़ा हूं, इस संसार में मैं बंधन में पड़ा हूं, कई प्रकार के प्रतिबंध है, बंधन है, मुझे सुहाता नहीं है, मेरा आत्मकल्याण करने में बहुत से प्रतिबंध लगते हैं, ये तो जेल खाना लगता है। क्या लगता है, जिसको मीठापन लगता है वो तो मुमुक्षुता का लक्षण नहीं है। देखो क्या क्या बात किया है, ये संसार कारागृह जैसा लगे, बंधन लगे, मुक्त रूप से मैं मेरा आत्मकल्याण करूं उसमें बहुत से अंतराय बाधा दिखने में आती है, ये कैद खाना है, ऐसा बार बार लगे, ये मोक्षुता का मुख्य लक्षण है। योग वाशिष्ठ आदि जो जो ग्रंथ ये ऐसे कारण के पोषक है, ऐसा जो मुमुक्षुता का लक्षण है या परिणाम है उसके पोषक ऐसे ग्रंथ हैं, उसमें वैराग्य प्रकरण बहुत बढ़ाया है। और जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा वैराग्य प्रकरण योग वाशिष्ठ में बहुत अच्छा ले है। हमने पढ़ा था, इधर में पढ़ा था, ले गए थे, इधर गए तो साथ में ले गए थे योग वाशिष्ठ, कुछ साल हो गए, 3-4 साल हो गए, पढ़ा था तो ऐसा लगा कि अरे अन्य मत वाले में भी ऐसा ग्रंथ है, ऐसी बातें हैं, और हमारे जैन संप्रदाय में ऐसा वैराग्य क्या ग्रंथ क्यों नहीं देखने में मिलता है। इतनी वैराग्य की इतनी तगड़ी बातें की हो, ऐसा लगा। रामचंद्र जी का वैराग्य फाट फाट वैराग्य है। वशिष्ठ ऋषि इनके गुरु थे, उनके साथ इनके डायलॉग्स हैं। इनके गुरु उनके उनको उल्टे प्रश्न कर रहे हैं। सामान्य रूप से गुरु तो वैराग्य के बोधक वचन कहते हैं, जबकि रामचंद्र जी का वैराग्य इतने थे कि उनको आसक्ति हो गई, ऐसी बात करते थे कभी कभी। तो रामचंद्र जी उसे कहते थे, अरे महाराज आप क्या बोल रहे हो, आप ये बात कर रहे हैं क्या, हमको आश्चर्य होता है कि आप ऐसे बात कैसे करते हो। जैसे वो 16 साल की उम्र के थे हुए तो बोले कि आपकी शादी होने वाली है, आपकी सगाई की बातें चलती हैं घर में, आपको ध्यान देना चाहिए। बोले कि आप क्या कह रहे हैं, उतना वैराग्य फाट फाट था कि आप हमको ऐसा उपदेश देते हैं, पहले तो आपने ऐसा उपदेश दिया था, अब आप ऐसी बात उल्टी कैसे करते हैं।
पांच से दस मिनट सवा सात जी કેટલા વાગે આવશે? બોલાવે 8 વાગે આવતો હોય તો પછી જમવાનો વાત નથી એમ, જો ના જઈને તો છે બરાબર
किया, उस विषय के संदर्भ में आगे कहते हैं कि मूल बात तो यह है कि जीव को वैराग्य तो आता है फिर भी ढीलापन रह जाता है, शिथिलता रहती है, और ये शिथिलता मिटाने का उनको कठिन भी लगता है। परंतु सबसे पहले प्रथम ही वो टालने योग्य है इसका मतलब ये हो गया कि मुमुक्षु को जोर से पूरी तेजी से अपने आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि परिणाम में शिथिलपना रहने से कभी परिणाम ठीक चले, कभी परिणाम ठीक नहीं चले, कभी ठीक चले कभी नहीं ठीक चले, ये बात बराबर नहीं है। प्रथम ही ये बात को यानी ढीलापन को छोड़ देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, टालना चाहिए, मैंने ढीलापन को मिटा देना चाहिए प्रथम से ही। तो क्या होता है कि बहुत अल्पकाल में मुमुक्षुता का विकास बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ढीलापन नहीं है तो, ढीलापन है तो समय निकल जाएगा, और जितना समय ज्यादा निकलेगा उतना ढीलापन है वो अधिक नुकसान का कारण हो जाएगा। इसलिए प्रवेश होते ही, इस लाइन में प्रवेश होते ही जोर से आगे बढ़ने का परिणमन में प्रकार हो जाना चाहिए। ये ढीलापन वाली बात नहीं रहनी चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है, ये मूल की बात है। वो ढीलापन प्रासंगिक परिस्थिति में ऐसा ढीलापन आ जाता है, और वैसे ही योग्यता ही कोई ऐसी होती है तो ढीलापन आ जाता है, वरना तो आना नहीं चाहिए। वैराग्य आने पर आना नहीं चाहिए, वेदना आती है, प्रथम ही भूमिका में वेदना आती है, और वेदना आती है तो वैराग्य भी आता है, वैराग्य आता है तो फिर उसको तेजी से आगे बढ़ जाना चाहिए आगे के स्टेज में, उसमें देर सवेर होती है, वो ढीलापन के कारण से होती है, तो परिणाम में चढ़ाव होता बहुत आता है। तो व्यापार करते करते बार बार नुकसान हुए उसमें तरक्की कितनी हुए उसको मोक्ष मार्ग में पहुंचना है तो एकदम तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी बीच में आए आत्मकल्याण के रास्ते में फटाफट हटाए उसको, दरकार किए बिना, विकल्प किए बिना, ऐसे तेजी से काम चले तो बहुत अल्पकाल में ये परमार्थ के मार्ग को या आत्मकल्याण के मार्ग को, मोक्ष को मार्ग को प्रवेश में हो जाता है, वरना शिथिलपना में, ढीलापना में तो काफी टाइम निकल जाता है। और काफी जब टाइम निकलता है तो किसी को भी आयुष्य का क्या भरोसा है, कि किसी का भी आयुष्य का तो कोई भरोसा है ही नहीं। इसलिए इतना बड़ा निर्वाण पद का फायदा आगे जाकर के होने वाला है, ये बात को लक्ष्य में रख करके हर बात को फटाफट हटा करके आगे बढ़ना चाहिए। एकदम जोर से जो आगे बढ़ता है वो किसी की परवाह नहीं करता है, और जो परवाह करता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको ये लगेगा, उसको वो लगेगा, उसको वो लगेगा, जिसको जो लगेगा सो लगेगा, मैं तो मेरा लाभ को छोड़ने वाला नहीं हूं। अनंत काल बीत गया, अब ये मौका हमको जाने देना नहीं है, बस बात खत्म। बहुत अल्पकाल में उतनी तरक्की करता है, उतने आगे बढ़ सकता है, आश्चर्यकारी इसका रिजल्ट आता है, आ सकता है, क्योंकि अंदर में ताकत बहुत भरी है, आत्मा में अंदर में बहुत ताकत भरी है, जिसकी कोई हद नहीं है उतनी ताकत भरी है। एक दफे खुद तैयार हो जाए तो काम तो बहुत अल्प समय में बढ़िया काम उन्होंने का अवकाश है, गुंजाइश है, ये समझ करके तेजी से आगे बढ़ना चाहिए।